आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
नमस्ते बच्चों, मेरा नाम हिमांशी भारद्वाज है और आज मैं आपके साथ अध्याय 7 पर बात करूंगी जिसका नाम है जैव विकास, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तो इसके बारे में हम आपको कुछ अध्ययन बिंदु बता देते हैं और एक एक कर उस पर चर्चा करेंगे। तो पहली अध्ययन बिंदु है जीव की उत्पत्ति। जीव कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे पृथ्वी पर आया, उसके बारे में जानेंगे। दूसरा है जंतुओं के विकास का क्रम, जितने भी जीव जंतु हैं उनके विकास में क्या क्रम रहा, वह कैसे कैसे उत्पन्न हुए। तीसरा बिंदु है जैव विकास के प्रमाण, कि जैव विकास हुआ है उसके कुछ प्रमाण हम आपको बताएंगे जो आपकी किताब में दिए हैं। आखिर में पढ़ेंगे जैव विकास के सिद्धांत। तो ये कुछ अध्ययन बिंदु हैं जो हम आपके इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे पेज नंबर 63 पर। तो आइए पढ़ते हैं। पृथ्वी पर पौधों एवं जंतुओं की असंख्य जातियां एवं प्रजातियां पाई जाती हैं। वर्तमान में भी निरंतर नई नई प्रजातियों की खोज हो रही है। मनुष्य आदिकाल से ही जीवों की उत्पत्ति के रहस्य को जानने हेतु प्रयासरत है। इस अध्याय में हम जीवों की उत्पत्ति के संबंध में कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे, जैसे जीवन का प्रारंभ कब और कैसे हुआ, क्या सभी जीव प्रारंभ से ही ऐसे थे जैसे आज हैं। तो इस पैराग्राफ में हमने क्या जाना कि पृथ्वी के ऊपर अनेकों प्रकार के पौधे और जानवर पाए जाते हैं, अलग अलग जाति के, जो कि असंख्य हैं, जिन्हें हम गिन नहीं सकते। वर्तमान में भी निरंतर नई नई प्रजातियों की खोज हो रही है, यानी कि आज भी प्रेजेंट कंडीशंस में भी हम लोग रोज रोज नई नई प्रजातियों को देख रहे हैं जिनके बारे में हम अखबारों में पढ़ते हैं। ठीक है, मनुष्य आदिकाल से, यानी कि जब वह आया था, जब पृथ्वी पर लाइफ की शुरुआत हुई, उस काल से ही इस रहस्य को जानने में लगा हुआ है कि यहाँ पर उत्पत्ति कैसे हुई, जीवन आया कैसे। तो इस अध्याय में हम उन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। तो एक प्रश्न आता है मन में, सभी के मन में, कि जीवन का प्रारंभ कब और कैसे हुआ, कब से शुरू हुआ, पहले कौन आया। दूसरा सवाल, क्या सभी जीव प्रारंभ से ऐसे ही थे जैसे वे आज दिखते हैं, जैसे हम आज दिखाई देते हैं, दो हाथ दो पैर सीधे खड़े हुए, क्या हम पहले भी ऐसे ही थे। तो उस सब पे हम चर्चा करेंगे। पहला है 7.1, जीव की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ लाइफ। पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति एक अत्यंत मंद प्रक्रिया के फल स्वरूप हुई है। क्या कह रहा है कि पृथ्वी पर जो जीव की उत्पत्ति हुई है वह बहुत ही स्लो रिएक्शन के दौरान हुई है। प्रारंभ में पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन एवं जल वाष्प थी। प्रारंभ में कैसी एनवायरनमेंट, कैसा एटमॉस्फेयर था, केवल नाइट्रोजन और वाटर वेपर्स का। फिर जब गर्मी ज्यादा बढ़ी, अत्यधिक गर्म वाष्प एवं कार्बन की प्रतिक्रिया से हाइड्रोकार्बन यौगिकों का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, कार्बन की प्रतिक्रिया हुई किसके साथ, वाटर के साथ, और क्या बना, हाइड्रोकार्बन कार्बन यौगिक या हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स बने। नाइट्रोजन एवं धातु की क्रिया से नाइट्राइड बने। जब वही नाइट्रोजन जो प्रेजेंट था एटमॉस्फेयर में, वह किसके साथ मिला, धातुओं के साथ, तो क्या बने, नाइट्राइड्स बने। नव निर्मित नाइट्राइड व गर्म वाष्प में अभिक्रिया से अमोनिया गैस का निर्माण हुआ। फिर जो नए नाइट्राइड प्रोडक्ट्स बने थे, वह गर्म वाष्प के साथ मिलकर उन्होंने अमोनिया गैस बनाई। हाइड्रोकार्बन और अमोनिया के रासायनिक संयोग से शर्कराओं तथा कार्बनिक अम्लों का निर्माण हुआ। फिर वही जो हमें क्या मिली, अमोनिया गैस, उसने हाइड्रोकार्बन के साथ अभिक्रिया करी जिससे हमें शर्करा और कार्बनिक अम्ल मिले। अमीनो अम्ल तथा कार्बनिक अम्लों के मध्य रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप विभिन्न प्रोटीनों का निर्माण हुआ। तो जो हमें कार्बोनिक एसिड्स मिले, उन्होंने अमीनो एसिड्स के साथ मिलके फिर से रासायनिक क्रिया करी और क्या मिले, विभिन्न प्रकार के प्रोटीन मिले। हमें पता है कि प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स, वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। 3 अरब वर्ष पूर्व इन प्रारंभिक प्रोटीन से एक वायरस सदृश जीव का विकास हुआ। मतलब कब की बात हो रही है, 3 अरब पहले की बात, 3 अरब साल पहले की बात हो रही है कि प्रारंभ में एक वायरस जैसा जीव प्रकट हुआ था, वही बना था, उसका विकास हुआ था। इनसे नीली हरी शैवाल के सदृश अत्यंत सूक्ष्म प्राथमिक जीवों का निर्माण हुआ। शैवाल एक तरीके की एल्गी है जिससे हमें लिटमस मिलता है, ठीक है, इसके रिलेटेड नीली या हरी रंग की हमको नए सूक्ष्म प्राथमिक जीव मिले उस टाइम पर, उस पृथ्वी पर कौन मिले? वायरस जैसे जीव के बाद नीली हरी शैवाल के जैसे प्राथमिक सूक्ष्म जीव, तत्पश्चात प्रोटोजोआ नामक एक कोशिकीय जीव की उत्पत्ति हुई। उसके बाद कौन आया? एक कोशिकीय यानी जिसके अंदर एक ही कोश हो, एक ही सेल हो, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म आया प्रोटोजोआ। सामान्यतः यह क्रमिक परिवर्तन सरलतम जीवों के जटिल जीवों की ओर बढ़ा है। क्या कह रहा है कि यह क्रमिक जो परिवर्तन हुआ है सिंपल ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की तरफ बढ़ा है। तभी तो हम बने हैं, हम भी तो कितने कॉम्प्लेक्स हैं, मल्टी सेल्युलर हैं, एक कोशिकीय नहीं है। तो ये हुआ आपका क्रमिक विकास। इसे आपको फ्लो चार्ट बनाकर लिख के याद करना है, ठीक है? सरलतम जीवों में परिवर्तनों द्वारा क्रमशः अधिकाधिक जटिल जीवों की उत्पत्ति एवं विकास को जैव विकास कहते हैं। तो यह जैव विकास की परिभाषा पिंक बॉक्स के अंदर दी है कि सरलतम जीवों में जो परिवर्तन होते हैं उसके द्वारा क्रमशः अधिकाधिक जटिल जीवों की उत्पत्ति, मतलब सरलतम जीवों से जटिल जीवों की उत्पत्ति के विकास को जैव विकास कहते हैं, ठीक है? ओरिजिन ऑफ लाइफ इसी को कहते हैं। अब आएंगे हम पेज नंबर 64 पर और दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, जंतुओं के विकास का क्रम या ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तो एक चित्र दिया है, जैव विकास का क्रम बनाया है। देखिए इसमें कितने सारे पशु और पक्षी बने हुए हैं। चित्र 7.1 में जीवों का विकास क्रम दिखाया गया है। सर्वप्रथम एक कोशिकीय जीवों का निर्माण हुआ, फिर उनसे बहुकोशी जीवों की उत्पत्ति हुई। पूर्व में ये जीव सरल थे परंतु धीरे धीरे विकास के क्रम में जटिल होते गए। आरंभ में सभी जंतु अकशेरुकी या इनवर्टिब्रेट्स बिना रीढ़ की हड्डी वाले थे। पहले इतना जान लेते हैं कि सर्वप्रथम एक कोशिकीय जीव आया, ठीक है, फिर उसके बाद बहुकोशिकीय जीवों की उत्पत्ति हुई। पूर्व में ये जीव सरल थे, सरल यानी सिंपल, लेकिन धीरे धीरे ये जटिल होते गए। जटिल और सरल किस रूप में बोला जा रहा है, किस उपलक्ष्य में बोला जा रहा है? इनका जो शरीर का संगठन था उसके उपलक्ष्य में बोला जा रहा है, ठीक है। आरंभ में सभी जंतु इनवर्टिब्रेट्स या बिना रीढ़ की हड्डी के थे। हमारी सबकी रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है, पीछे कमर में। लेकिन जो पहले प्रारंभ में जब जीव जंतु आए उनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं थी। इनसे मछलियों का विकास हुआ। किसका विकास हुआ? मछलियों का, जिन्हें उभयचर या जल स्थलचर जंतुओं का विकास हुआ। मछलियां आई, मछलियों के बाद उभयचर जो जल और स्थल दोनों पर रह सकते थे उन जंतुओं का विकास हुआ। इनसे सरीसृपों का विकास हुआ जिन्होंने करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी का विचरण किया, जैसे डायनासोर, जो बहुत बड़े आकार के जानवर बने जैसे कि डायनासोर। फिर उसके बाद सरीसृप पक्षियों में और कुछ स्तनी वर्ग में विकसित हुए। फिर वही किसमें? पक्षियों में और कुछ स्तनी वर्ग में विकसित हुए। स्तनी वो होते हैं जो अपने बच्चों को आहार में दूध दे सकते हैं, पिला सकते हैं, ठीक है। एक वर्ग से दूसरे वर्ग के जंतुओं के विकास में हजारों वर्षों का समय लग जाता है। इसी तरह पादपों में भी क्रमिक विकास हुआ। एक तरफ तो हमने जानवरों की बात की, जंतुओं की बात करी, लेकिन इसी तरीके का विकास हमें पौधों में भी मिला जो चित्र 7.1 में दिया हुआ है। नीचे एक चित्र दिया है जिसमें आपको डायनासोर दिया है जो आज विलुप्त हो चुका है। ये विलुप्त क्यों हुआ? यही इवोल्यूशन की स्टोरी है कि ये विलुप्त कैसे हुआ। अब आ जाएंगे हम अगले पेज पर, जैव विकास के प्रमाण या इविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। यही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो पहले हम पढ़ेंगे वर्गीकरण प्रमाण या इविडेंसेस फ्रॉम क्लासिफिकेशन। जंतुओं के वर्गीकरण प्रोटोजोआ से लेकर एकाइनोडर्मेटा तक समस्त जंतुओं का क्रमिक विकास हुआ। सबसे पहले हमने प्रोटोजोआ नामक, जिसको हमने कोई नाम दिया उसको जाना था कि प्रोटोजोआ। फिर उसके बाद एकाइनोडर्मेटा तक समस्त जंतुओं का विकास होता रहा है। इसी प्रकार कॉर्डेटा के पीसेस, एम्बीफीबिया, रेप्टीलिया, एवीज तथा मेमेलिया में कई समानताएं हैं, जैसे इनमें कशेरुक दंड खोखला होता है। क्या खोखला होता है? कशेरुक दंड। पीसीज वर्ग के जंतुओं का विकास नॉन कॉर्डेटा से हुआ। किससे हुआ? नॉन कॉर्डेटा से। पीसेज वर्ग है एक श्रेणी है जिनका विकास कहां से हुआ? नॉन कॉर्डेटा से। कॉर्डेट्स कौन होते हैं? जिनके अंदर नोटोकॉर्ड पाया जाता है या कशेरुक दंड पाया जाता है। और नॉन कॉर्डेटा कौन होते हैं? जिनके अंदर कशेरुक दंड या नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता है। विकास का क्रम सरल से जटिल की ओर हुआ। इससे यह सिद्ध हुआ कि सभी जीव एक पूर्वज से विकसित हुए हैं। तो अब इसके नीचे आप देखेंगे 7.3 पे एक वर्गीकरण प्रमाण दिया है, आपको बस उसी को समझना है कि सबसे पहले कौन आए, एवीज, और उसके बाद मैमिलिया। ये ऊपर का क्रम न देखकर हम नीचे से देखेंगे। कैसे देखेंगे? नीचे से कि पादप जंतु इनके दोनों के रिस्पेक्ट में कैसे कैसे क्रमिक विकास हुआ है। तो जंतु के ऊपर जाएंगे प्रोटोजुआ, पेरिफेरा, प्लेटीहेलमिंथीज, फिर मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, ये सब चल रहा है, ठीक है। पादप के साइड देखेंगे सीलेमेंट्रेटा या सिलेंट्रेटा, फिर इकाइनोडर्मेटा, फिर पीसीज, फिर ऊपर देखेंगे दूसरी साइड एम्बीफीबिया, फिर रेप्टीलिया, फिर एवीज और मेमिलिया। ये ब्रांच जो निकल रही है ये जंतुओं के लिए है। पौधों की एक साइड दी गई है, पादपों का भी क्रमिक विकास हुआ उस पर इन्होंने ज्यादा चर्चा नहीं की है। मेन जो हमें पढ़ना है वो जैव का पढ़ना है, ठीक है। उसके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, तब आपको ये क्लियर हो जाएगा, समझ जाएगा। तो शारीरिक संरचना प्रमाण या स्ट्रक्चरल एविडेंस, शारीरिक संरचना के आधार पर कैसे इवोल्यूशन हुआ उस पर बात करेंगे। कि समजात अंग या होमोलोगस स्ट्रक्चर्स या ऑर्गन्स, समजात एक से दिखने वाले जो अंग है उन्हें हम कहेंगे समजात अंग। तो पहले आप देखिए चित्र 7.4 को। एक वेल का हाथ दिया है, बाजू दिया है, फिर पक्षी का दिया है, फिर चमगादड़, और लास्ट में मनुष्य का। हमारा अपना हाथ तो हम पहचान सकते हैं, मनुष्य का हाथ दिया है। तो यह समजात अंग है। इसमें इन सभी के अग्रपादों की जो बाह्य संरचना है उसमें विभिन्नता दिखाई देती है, जो कि अलग अलग प्रकार के आवास एवं कार्य के लिए कारण होती है। अगले पेज पे आप पढ़ सकते हैं इसको, ही लिखा हुआ है। इन जंतुओं के अग्रपादों के कार्यों एवं बाह्य संरचना में असमानताएं होते हुए भी इन सभी जंतुओं के कंकाल की मूल रचना तथा उत्पत्ति समान है। मेन बात यही है। होमोलोगस क्यों कहा गया है? कि इनका जो स्ट्रक्चर है उसमें तो आप देखेंगे असमानता है, एक सा नहीं दिख रहा है, आप खुद देखिए। मगर इनकी जो कंकाल, जो हड्डियों का ढांचा है, उसकी जो मूल संरचना है उसकी उत्पत्ति समान है। ऐसे अंगों को हम समजात अंग या होमोलोगस ऑर्गन्स कहते हैं, और इनका जो फंक्शन है वो भी सेम होता है। अंगों की समान उत्पत्ति सिद्ध करती है कि ये इन सभी के पूर्वज समान थे तथा कालांतर में इनका क्रमिक विकास हुआ। कैसे? कालांतर में, टाइम, एक बहुत बड़े टाइम पीरियड के बाद इनमें क्रमिक विकास हुआ है। फिर एक सारणी 7.1 दी है, जिसमें जंतुओं के अग्रपाद या आगे वाले पैर, आगे वाले जो हिस्सा होता है उसकी बात की जा रही है। हाइंड लिम्ब्स जिसको हम कहते हैं, हाइंड लिम्ब्स, उसके कार्य व उनका रूपांतरण दिया गया है। इसे आप पढ़िए, क्या दिया है? वेल। अग्रपाद का काम है तैरना, तो फंक्शंस कैसे हैं? अलग। और अग्रपाद का रूपांतरण फ्लिपर में हो गया। किसमें हो गया? फ्लिपर में। याद क्या रखना है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है कंकाल का वो सेम रहा है, मगर कालांतर में उनका शेप बदल गया, ठीक है, रूप बदल गया, लेकिन कार्य भी बदल गया। तो ये क्रमिक विकास का एक प्रमाण है, ठीक। पक्षी उड़ने का कार्य करता है, पंख में रूपांतरण हुआ। चमगादड़ उड़ने का कार्य करती है। मनुष्य के हाथ क्या कार्य करते हैं? पकड़ना, खेलना हाथों से, ये सारे कार्य हम करते हैं, ठीक है। अगली बात करेंगे समवृत्ति अंग या एनालॉगस ऑर्गन्स। एक चित्र देखिए, कीट, पक्षी, चमगादड़, इनके पंख दिए हैं। चित्र 7.5 समवृत्ति अंग। चित्र में कीट, पक्षी एवं चमगादड़ के पंख दिखाई गए हैं, जो इनके उड़ने के कार्य में सहायता करते हैं। इनके पक्षी की संरचना एवं उत्पत्ति में अंतर होता है। इन पंखों की जो स्ट्रक्चर है उसकी उत्पत्ति में अंतर है, उत्पत्ति व संरचना दोनों में अंतर होता है। कीट के पंखों की उत्पत्ति शरीर के भित्ति से निकले प्रवर्धों के रूप में होती है, जबकि पक्षी तथा चमगादड़ के पंख की उत्पत्ति अग्रपाद के रूपांतरण से होती है। मतलब क्या कह रहा है? कि जो कीट है, जो कीड़ा है, उसका जो पर निकला है उसकी उत्पत्ति शरीर की भित्ति से निकले प्रवर्धों के रूप में होती है, ठीक है, जबकि जो पक्षी तथा चमगादड़ के पंख हैं, उनके अग्रपाद के रूपांतरण से चेंज के कारण होती है। अतः इनके कार्यों में तो समानता है, परंतु उत्पत्ति एवं संरचना में भिन्नता होती है। ऐसे अंगों को समवृत्ति अंग कहते हैं। समवृत्ति अंग वाले जंतुओं का विकास जंतुओं के विभिन्न वर्गों से विभिन्न प्रकार से होता है। यही याद रखना है। ठीक है, क्या पढ़ा हमने? दो चीज पढ़ी, एनालॉगस और होमोलोगस ऑर्गन्स। क्या जिनको हिंदी में क्या बोला हमने? समजात अंग और समवृत्ति अंग। दोनों के डिफरेंसेस को हम टेबल के फॉर्म में लिख सकते हैं और दोनों के दो दो उदाहरण हम याद रख सकते हैं। तो यहाँ तक हमने जाना। इसके बाद इस पार्ट में हम जीवाश्मीय प्रमाण या पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस के ऊपर बातें करेंगे, ठीक है, जिसके लिए आपको पेज नंबर 67 पर आना है। चट्टानों में मिलने वाले मृत जीवधारियों के अवशेष अथवा उनके चिन्हों को जीवाश्म कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवाश्म। इसी को समझते हैं पहले कि चट्टान, उनमें मिलने वाले मृत जीवधारियों, चट्टान होते हैं रॉक्स, ठीक है, पहाड़ जिनके ऊपर बन जाते हैं उनके नीचे पहले ही रॉक्स होते हैं या चट्टानें होती हैं, उनमें हमें जीवधारियों के अवशेष, मृत जो हो जाते हैं मरने के बाद कुछ अवशेष मिलते हैं, उन्हीं को हम फॉसिल कहते हैं या जीवाश्म कहते हैं। ये अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। कभी कभी तो जीवधारियों के पूरे शरीर के आकार का जीवाश्म मिलता है, पूरा पूरा मिल जाता है कभी कभी तो, जैसा आपके चित्र 7.7 में दिया है बिल्कुल वैसा, एक तरफ जीवित मछली है और दूसरी तरफ उसका जीवाश्म है या उसका फॉसिल है, ठीक है। यह विकास का सबसे ठोस प्रमाण है। कैसा? एक ऐसा प्रमाण है जिससे सच में पता चला कि हाँ क्रमिक विकास हुआ है। चित्र 7.6 में आपने देखेंगे कि घोड़े के विकास का क्रम दिया है। कैसा छोटा सा जानवर है, बढ़ते 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 विकास की परिवर्तन में या विकास क्रमिक विकास में ये बढ़कर घोड़ा बन गया, ठीक। तो अवशेषी प्रमाण, एविडेंसेस फ्रॉम वेस्टिजियल ऑर्गन्स, ये दूसरा टॉपिक। उससे पहले हमने पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस पढ़ा, उसको समझ लीजिए एक बार और, कि जब हमें मृत जीवों के शरीर के अवशेष मिलते हैं चट्टानों में, तो उन फॉसिल से हम स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं कि ये आज के समय में ऐसा ढांचा किस जानवर का है या किस पौधे का है, उसी को हम जीवाश्मीय प्रमाण या पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस कहते हैं, ठीक है। जैसे ये मछली दिखाई है आप लोगों को, बिल्कुल ऐसे ही उसकी स्टडी की जाती है। कुछ पत्ते कई बार हमें मिलते हैं दबे हुए, बिल्कुल जो दब जाते हैं चट्टानों के नीचे, फिर वो खुदाई के दौरान मिलते हैं, तो हम जानते हैं कि आज के दौरान ये पौधा ऐसा है, बदल के ऐसा हो गया, इसकी पत्तियों में ये बदलाव आया, तो इसी को हमने पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस कहा है। अब बात करेंगे अवशेषी प्रमाण या एविडेंसेस फ्रॉम वेस्टिजियल ऑर्गन्स, ठीक है। जंतुओं में कुछ ऐसे भी अंग पाए जाते हैं जो आज तो उनके अवशेष के रूप में है, परंतु कभी उनके पूर्वजों में बहुत विकसित तथा लाभकारी थे। यानी कि आज वह हैं, लेकिन वह हमारे किसी काम के नहीं हैं। मानव में भी ऐसे कुछ ऑर्गन्स हैं, जैसे कि आपका अपेंडिक्स, जिसमें कई बार अगर दर्द हो जाए तो वो निकाल के अलग करना पड़ता है, ठीक है, बात करेंगे अभी उस पर। उदाहरण निम्नलिखित सारणी 7.2 में दिए गए हैं, इनको देख लेते हैं, ठीक है। सारणी 7.2, जंतुओं के मुख्य अवशेषी अंग। मानव, बाह्य कर्ण पेशियां, जो बाहर की हमारी एक्सटर्नल ईयर मसल्स हैं, ठीक है, वह आज के टाइम में हमारे किसी काम की नहीं है। निमेशक पटल, पुच्छ कशेरुकी, कृमि रूप परिशेषिका, इनके बारे में जान लेते हैं कि ये क्या क्या हैं। तो जो बाह्य कर्ण पेशियां आपको दी गई हैं, तो वो कर्ण पेशियां हमारे अंदर आज हैं, लेकिन वह कोई कार्य नहीं करती, लेकिन जो हमारे पूर्वज थे उनके अंदर ये कान को आगे पीछे मोड़ने के काम करती थी, जैसे जानवरों में आपने देखा होगा। निमेशक पटल को हम कहते हैं प्लीका सेमिनुलरिस, जो हमारी आंख के साइड में होती है, बिल्कुल कॉर्नर में, उसको वो एक रेमिनेंट है, बचा हुआ हिस्सा है निक्टेटिंग मेम्ब्रेन का, जो पहले हुआ करती थी, कोई कार्य करती थी, अब नहीं करती है, ठीक है। फिर है पुच्छ कशेरुकी, जिसे कॉक्सिक्स कहते हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी का सबसे आखिरी हिस्सा है, इसका भी अब कोई कार्य नहीं है। और आखिरी है कृमि रूप परिशेषिका, इसका भी अब कोई कार्य नहीं है। फिर अब हम बात करेंगे समुद्री तल की मछलियां। अल्पविकसित आंखें, इनकी आंखें कैसी हैं, अल्पविकसित हैं। फिर है अजगर, पक्षपात की अल्पविकसित अस्थियां, इसके अंदर कुछ ऐसी अस्थियां पाई जाती पीछे की तरफ जो विकसित नहीं हुई, अगर हो जाती तो वो भी चलता पैरों से। और कीवी और शुतुरमुर्ग, इनके पंख ये कैसे हैं, अल्पविकसित हैं। शुतुरमुर्ग और कीवी उड़ नहीं सकते, ठीक है। वे अवशेषी अंक प्रमाणित करते हैं कि इनके पूर्वजों में ये अंग क्रियाशील एवं विकसित रहे होंगे, लेकिन कालांतर में इनकी उपयोगिता कम होने के कारण अवशेष के रूप में यह रह गए हैं। क्या बताते हैं अवशेषी अंग, कि पूर्वजों में तो क्रियाशील थे और विकसित थे, लेकिन आफ्टर अ सर्टेन पीरियड इनकी उपयोगिता कम हो गई और अवशेष के रूप में यह रह गए। पीछे पेज नंबर 68 पे दिए हुए हैं डायग्राम्स, कर्ण की पेशी, कृमि रूप, ये अपेंडिक्स को कहा है, ठीक है, कृमि रूप परिशेषिका जो बोला है, क्या है, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स इंग्लिश में बोलते हैं इसको। और निमेशिका दिया है, निमेशिक पटल दिया है आपको, इनके बारे में आप देख सकते हैं। तो यहां हमने बात की अवशेषी अंगों की, ठीक। अब बात करेंगे शरीर क्रिया प्रमाण, एविडेंसेस फ्रॉम फिजियोलॉजी, पाचन तंत्र में समानता। तो क्रिया के आधार पर, शरीर की क्रिया के आधार पर समानताएं देखेंगे। पहले बात करेंगे पाचन तंत्र की, तो मेढक, पक्षी और मानव, कुछ पाचन तंत्र दिए हैं, दो जानवरों के और एक मानव का, ठीक है, मेढक और पक्षी का दिया है। देखिए कितनी समानता है, दिख रही है आपको समानता, चित्र को ढंग से देखेंगे, पेट एक सा दिख रहा है, लिवर दिखाई दे रहा है, आंतें दिखाई दे रही हैं। तो हम देखते हैं कि इन जंतुओं के पाचन तंत्र में ग्रसनी, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत आदि पाए जाते हैं। इनमें यकृत, अग्नाशय आदि ग्रंथियां भी हैं। इनमें उत्पन्न पाचक रस, डाइजेस्टिव एंजाइम्स व इनके कार्य भी समान हैं। अतः यह सिद्ध होता है कि इन जंतुओं का विकास एक निश्चित क्रम में हुआ है। कैसे हुआ है, निश्चित क्रम में, यानी कि एक सी समानताओं के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि इनमें ऐसे ऐसे क्रमिक विकास हुआ है। ग्रंथियां, जो चीजें मेढक में नहीं है वो पक्षी में है, या पक्षी में नहीं है वह सारी चीजें जो दोनों में ही नहीं है वह मानव में पाई जाती हैं। तो ये एक उदाहरण है क्रमिक विकास का शरीर क्रिया के आधार पर, ठीक है। फिर 7.10 में आपको चित्र दिया है कि विभिन्न जंतुओं के कंकाल बताए गए हैं, उनकी भी आप समानता निकाल सकते हैं मनुष्य के साथ। कुत्ता, पक्षी, मेढक, मछली, सर्प और एक तरफ मनुष्य है। मनुष्य का कंकाल आपको आपके स्कूल में भी मिल जाएगा कहीं पे, उससे आप देख सकते हैं कि कैसा होता है कंकाल। अगले पेज पे आएंगे, सामान्यतः पृष्ठवंशी जंतुओं में कंकाल पाया जाता है। पृष्ठवंशी यानी जो पीठ ऊपर करके चलते हो, पृष्ठवंशी कंकाल होती है। इनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है जो कि छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें कशेरुकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, कशेरुकाएं। इनके हाथ पैर की हड्डियों व कंकाल तंतुओं में समानता यह बताती है कि इनके पूर्वज समान रहे होंगे। कैसे रहे होंगे, समान। समय के साथ परिस्थितियों में परिवर्तन होने से इनमें कुछ अंतर आ गया। समय जैसे जैसे बीता इनमें क्या हो गया, परिवर्तन आया। तो रीढ़ की हड्डी जो पाई जाती है वो सामान्यतः किन में मिलती है, पृष्ठवंशी जंतुओं में, जो उनका कंकाल होता है। ये छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी होती है। पृष्ठवंशी वह भी होते हैं जिनकी पीठ होती है, ठीक है, जैसे कि हम हैं, हम भी पृष्ठवंशी हैं, लेकिन हम भी पहले जैसे जानवर चलते हैं वैसे ही चलते थे, लेकिन आज धीरे धीरे हमारा जो पोस्चर है वो सीधा हो गया। हम खड़े कैसे होते हैं, सीधे, लेकिन जानवर आज भी वैसे ही चलता है। तो ये भी एक क्रमिक विकास का उदाहरण है। इनके पैर की हड्डियों व कंकाल तंत्रों में भी समानता यह बताती है कि इनके पूर्वज समान रहे होंगे। समय के साथ परिस्थितियों में परिवर्तन होने से इनमें कुछ अंतर आ गया, ठीक। अब बात करेंगे हृदय की जटिलता का प्रमाण। तो देखिए मछली, मेढक, सर्प, मनुष्य, इनके चित्र दिए हैं, इनके हृदयों के चित्र दिए हैं, कितनी ज्यादा समानता है सर्प, मेढक, मनुष्य के हार्ट में। मछली में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन फिर भी एक हद तक काफी समानता है। हम देखते हैं कि मछली के हृदय की संरचना सबसे सरल होती है एवं मनुष्य की जटिल, जो कि एक निश्चित विकास का क्रम दर्शाता है। फिर एक सारणी 7.3 दी है जंतुओं के हृदय की संरचना। मछली दो कोष्ठ, या इसमें क्या होते हैं, दो हिस्से होते हैं, ठीक है, एक आलिंद और एक निलय, मेढक तीन कोष्ठ, दो आलिंद और एक निलय, सर्प दो आलिंद और दो अपूर्ण निलय, लेकिन मनुष्य में चार कोष्ठ हैं पूरे पूरे, दो आलिंद और दो विलय, यानी कि दो एट्रियम या एट्रिया और दो वेंट्रिकल्स मिलके क्या बनाते हैं, चार खानों का हृदय मनुष्य में। रुधिर प्रोटीन में समानता, विभिन्न वर्गों के जंतुओं उदाहरण मनुष्य, वन, मानुष, बंदर, मछली तथा मेढक आदि के रुधिर प्रोटीन में समानताएं पाई जाती हैं। भ्रूणीय प्रमाण, एविडेंसेस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी, बहुकोशिकी जंतुओं में लैंगिक प्रजनन द्वारा एक कोशिकीय युग्मनज बनाता है जो कि विभाजन के द्वारा भ्रूण बनता है। रुधिर और भ्रूण के बारे में भी बताया, रुधिर भी एक जैसा मिलता है जो जानवर यहाँ लिस्ट दिया आपको, और भ्रूणीय प्रमाण यानी कि भ्रूण के द्वारा भी बताया जा सकता है कि काफी समानता मिलती है। भ्रूण क्या होता है, हमारा फीटस जिससे हम बने हैं, पेट में जो अंदर बच्चा होता है उसको भ्रूण कहते हैं। बहुकोशिकी जंतुओं में लैंगिक प्रजनन द्वारा एक कोशिकीय युग्मज बनता है जो कि विभाजन के द्वारा भ्रूण बनता है, ठीक है, जायगोट के बाद भ्रूण बनता है फीटस। उसकी चित्र मिलेगी आपको अगले पेज पे, चित्र 7.12, विभिन्न जंतुओं के भ्रूण परिवर्धन की अवस्थाएं। देखिए प्रारंभिक भ्रूण मछली, कछुआ, चूजा और मनुष्य का दिया है, कितनी ज्यादा समानता है, चिड़िया के बच्चे का, चूजे का, वह भी काफी कुछ मनुष्य जैसा दिखता है, ठीक है, इस चित्र को आप देखेंगे। जब हम मछली, कछुआ, चूजा, मनुष्य के भ्रूणों के चित्र देखते हैं तो उनकी आरंभिक अवस्थाएं लगभग समान दिखाई देती हैं। इससे सिद्ध होता है कि सभी पृष्ठवंशियों के पूर्वज मछली सदृश होंगे तथा इनका विकास निश्चित क्रम में हुआ है, यह हम जानेंगे। इनसे हमें क्या पता चला कि जो पृष्ठवंशी पूर्वज हैं मछली के जैसे ही रहे होंगे और उनके विकास के क्रम में आज हम ऐसे दिखाई देते हैं। नीचे एक बॉक्स दिया है, उसमें लिखा है कि प्रत्येक जंतु का भ्रूणीय विकास उसके जातीय विकास के इतिहास को दोहराता है, इसे पुनरावर्तन सिद्धांत कहते हैं, कि जितने भी जंतु हैं जो उनका भ्रूणीय विकास हम देखें तो वह उनका एक जातीय विकास को भी बताता है। इससे ये पता चलता है कि ये पुनरावर्तन सिद्धांत है, इसे हेकल नामक जर्मन वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। किसने निकाला था, हेकल नामक साइंटिस्ट ने। तो ये हमने पढ़ा, इसके बाद अगली ऑडियो में हम डिस्कस करेंगे योजक कड़ी प्रमाण, ठीक है, कनेक्टिव लिंक और उसके आगे की टॉपिक्स को। तब तक आप इसे पढ़िए क्योंकि थोड़ा टफ टॉपिक है, आपको इसको रीडिंग करना पड़ेगा, तब आपको ये बार बार पढ़ने के बाद समझ में आएगा, ठीक है। थैंक यू।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।